पाठ 27 अध्याय 26 27 और 28। अध्याय 25 में यहोवा ने तीन मुख्य साज सज्जा के बारे में निर्देश दिए हैं जिन्हें तंबू के पवित्र स्थान के अंदर रखा जाना है, वाचा का संदूक, भेंट की रोटी की मेज और मेनोरा स्वर्ण दीप स्तंभ। अध्याय 26 से शुरू होकर हमें तंबू के निर्माण के लिए निर्देश मिलते हैं। आज रात हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और निर्गमन अध्याय 26 और 27 तथा अध्याय 28 के प्रथम भाग के साथ साथ नए नियम के कुछ लेखों को भी कवर करेंगे जो हमारे विषय से संबंधित हैं, इसलिए अपनी बाइबलें खुली और संभाल कर रखें। अध्याय 26 पूरा पढ़ें। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि तंबू को पवित्रता की अलग अलग डिग्री के तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। सबसे पवित्र स्थान सबसे बड़ा था, पवित्र स्थान थोड़ा कम पवित्र था और बाहरी प्रांगण सबसे कम था। यह भी याद रखें कि तंबू की परिधि मूल रूप से कपड़े से बनी एक बार थी जो एक खुले आंगन को घेरती थी। तंबू वाला हिस्सा जिसमें केवल परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान शामिल थे, तंबू का एकमात्र हिस्सा था जिसमें छत थी।
यह समझते हुए कि आधुनिक माप में बाइबल के क्यूबिट की लंबाई कितनी थी, इस पर कुछ असहमति है। आम सहमति यह है कि बाहरी प्रांगण की परिधि लगभग 150 फीट लंबी और 75 फीट चौड़ी थी। तंबू को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया जाता था, जिसमें तंबू वाला हिस्सा पश्चिमी छोर की ओर अधिक होता था। प्रांगण के पूर्वी छोर पर एक बड़ा 30 फीट चौड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया था और तंबू में प्रवेश द्वार भी पूर्व की ओर था। चूंकि तंबू को जहां कहीं भी परमेश्वर ने इसराइल को जाने के लिए निर्देशित किया था वहां जाना था, इसलिए इसे गतिशील होना था और इसे पूरा करने के लिए इसका डिजाइन काफी सरल था जो विनिर्देश हमें दिए गए हैं। यहां स्पष्ट रूप से इसका मतलब था कि इसे कई बार इकट्ठा और अलग किया जाना था और फिर परिवहन किया जाना था। इसे रेगिस्तान की भयावह परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाया गया होगा। इसकी अत्यधिक सूखापन और महीन रेत से लदी भयंकर हवाएं जो हमेशा मौजूद रहती थी, फिर भी यह हल्के पदार्थों से भी नहीं बना था, इसे मजबूत होना था, इसलिए यह भारी भी रहा होगा। हम आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन गिनतियों की पुस्तक हमें बताती है कि अकेले कीमती धातुओं का कुल योग 8 टन था और निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी का वजन भी कई टन रहा होगा। यहां तक कि कपड़ा और मेढ़े की खाल भी काफी वजनी रही होगी। गिनती हमें यह भी बताती है कि बैलों की टोलियों द्वारा खींची गई कई ढकी हुई गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी। तंबू का परिवहन, हालांकि सभी संकेत इस बात के हैं कि तंबू का सामान, संदूक, मेनोरा, शो ब्रेड और धूप की मेजें विभिन्न कुलों के हाथ से बनाए गए थे। लेवी जनजाति के लोगों को विशेष वस्तुएं दी गई थीं जिन्हें उन्हें उठाना था। किसी अन्य वस्तु को छूना इसराइल के परमेश्वर के विरुद्ध अपराध था। बाहरी प्रांगण को घेरने वाला पर्दा बारीक बुनी हुई सनी की चादरों से बना था और उन्हें कांस्य से ढके बबूल की लकड़ी के खंभों द्वारा जगह पर रखा गया था। प्रत्येक खंभे के नीचे कांस्य के सॉकेट रखे गए थे और प्रत्येक खंभे के ऊपर से जमीन तक रस्सियां बांधी गई थीं और कांस्य के खंभों से उन्हें जगह पर रखा गया था। यहां कांस्य के उपयोग पर ध्यान दें। चूंकि यह बाहरी क्षेत्र था जहां मानवता प्रवेश कर सकती थी, इसलिए इसके निर्माण में इस गैर कीमती धातु का उपयोग किया गया था और व्यावहारिक पहलू से कांस्य सोने या चांदी की तुलना में निर्माण के लिए बहुत कठिन और अधिक उपयोगी था। हालांकि प्रत्येक खंभे के शीर्ष पर एक चांदी की टोपी और कुछ चांदी की सलाखें या हुक थे जिनसे पर्दे लटकाए गए थे।
पर्दे बनाने के लिए चुने गए धागे के रंग नीला, बैंगनी और लाल ने इस प्रयास को और भी महंगा बना दिया, क्योंकि इन विशेष रंगों को बनाना कठिन था। और हमें बताया गया है कि जाहिर तौर पर इन लिनन की कुछ या सभी चादरों में करूबों की तस्वीरें बुनी हुई थीं। मैं वास्तव में रहस्यमय करूबों के महत्व को उतना नहीं समझा सकता जितना मैं चाहता हूं, सिवाय इसके कि वे स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण तत्व थे। चूंकि यह यहोवा ही था जो अपने तंबू के विवरण पर यह वर्णन दे रहा था, और चूंकि यह कई बार स्पष्ट किया गया है कि जंगल का तंबू स्वर्गीय त्रिकाल तंबू का एक भौतिक सांसारिक प्रतिनिधित्व है, तो
तो ये होना चाहिए कि परमेश्वर अपनी सेवा में कई करूबों को नियुक्त करता है, आमतौर पर परम पावन के संरक्षक के रूप में, और इसके अलावा करूबों को परमेश्वर के निकट रहने, परमेश्वर के साथ बातचीत करने, उनके सिंहासन कक्ष में रहने का असामान्य विशेषाधिकार है। अब तंबू, जो कि पवित्र स्थान था, लगभग 45 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। इसे दो कमरों में विभाजित किया गया था। पवित्र स्थान दो कमरों में से बड़ा था, लगभग 30 फीट गुणा 15 फीट, और परम पवित्र स्थान 15 फीट गुणा 15 फीट का घन था। जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि पवित्र स्थान में इस्तेमाल की गई बबूल की लकड़ी सोने से ढकी हुई थी, न कि आम कांस्य से, जैसा कि लोगों के न्यायालय क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता था। परमेश्वर ने प्रकाश को सबसे उपयोगी और शानदार तरीके से प्रतिबिंबित किया होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कमरे ने एम्बर का गर्म रंग लिया होगा, जो सुनहरे दीवारों से परावर्तित प्रकाश के साथ लिया होगा? अभयारण्य की संरचना बनाने में बबूल की लकड़ी के तख्तों का उपयोग किया गया था, और ये तख्ते पूरी तरह से सोने में जड़े हुए थे। तंबू की पूरी सोने और लकड़ी की संरचना को एक आवरण से ढका और संरक्षित किया गया था। इसमें चार परतें थीं। सबसे भीतरी आवरण महीन सनी का था, उसके बगल में बकरी के बालों से बुना हुआ था। बकरी के बाल तंबू बनाने के लिए सबसे आम मात्र उपयोग थे। इसराइलियों के विशाल बहुमत ने उन्हें इस्तेमाल किया। वे अपने लिए बकरी के बाल से बने बुने हुए तंबू का उपयोग करते थे, क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। टिकाऊ, मजबूत और बुनाई की कसावट के आधार पर कुछ हद तक जलरोधी, हालांकि बारिश शायद ही कोई बाधा थी। समस्या यह थी कि वे कहां भटक रहे थे। बकरी के बालों को ढकने के लिए राम की खाल की एक परत थी, जो लाल रंग से रंगा गया था, और अंत में सबसे बाहरी परत, जिसे कठोर रेगिस्तानी मौसम का सामना करना पड़ा। यह बाहरी परत थोड़ी रहस्यमय है, क्योंकि इसके लिए इब्रानी शब्द तच था। यह किसी प्रकार के पशु की खाल को संदर्भित करता है। कई अनुवादक इस लाकाश को बस एक जानवर की खाल समझते हैं, उच्च श्रेणी का चमड़ा, लेकिन यह तर्क को चुनौती देता है, क्योंकि मवेशियों से प्राप्त चमड़ा आम था और इसका वर्णन करने के लिए आम तौर पर समझे जाने वाले शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तचश एक असामान्य असामान्य शब्द है, और इसका उपयोग केवल जंगल के तंबू के संदर्भ में किया जाता है। यह यहूदियों द्वारा दावा किया गया है। सदियों से विद्वानों का मानना है कि बाहरी आवरण या तो सील या पॉरपोइज की खाल से बना होता था, क्योंकि यह वायुरोधी जलरोधी होता था और रेगिस्तानी जीवन का हिस्सा होने वाली अति सूक्ष्म धूल से भी सुरक्षा प्रदान करता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सील या पॉरपोइज, शायद दोनों का ही इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इजरायली री सागर के बहुत नजदीक थे और ये दोनों जीव वहां बहुतायत में थे। मुझे लगता है कि उन्होंने स्थानीय समुद्र तटीय निवासियों से उनके लिए वस्तु विनिमय किया होगा, या फिर कुछ अधिक संपन्न इजरायली मिस्र से अपने साथ कुछ लाए होंगे, लेकिन मुझे संदेह है, क्योंकि यह मिस्र में इस्तेमाल की जाने वाली आम सामग्री नहीं रही होगी। तंबू में मुख्य प्रवेश द्वार, जो किसी को पवित्र स्थान में ले जाता था, उसे द्वार, इब्रानी में मसाख कहा जाता था। होब्स के पवित्र स्थान में जाने के लिए किसी को पवित्र स्थान से होकर गुजरना पड़ता था। एक पर्दा जिसे इब्रानी में परोखित कहा जाता है, पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करता था। इब्रानी में पवित्र स्थान का नाम कोडेश है। परम पवित्र स्थान को कोडेश हा कोडाशिम कहा जाता है।
निर्गमन अध्याय 27 पूरा पर है। जिस तरह तंबू के पवित्र स्थान के अंदर संदूक सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण वस्तु थी, उसी तरह पीतल की वेदी तंबू के पवित्र स्थान के बाहर सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण वस्तु है। इसलिए बलिदान की महान वेदी का डिजाइन और स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह जगह है जहां अनगिनत लाखों निर्दोष जानवरों की जान ली जाती है, उनका खून बहाया जाता है, उनके शरीर को जलाकर राख कर दिया जाता है। यह सब मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए आवश्यक है, ताकि परमेश्वर के साथ शांति हो सके। अक्सर इस वेदी को पीतल की वेदी कहा जाता है। इब्रानी में इसे मिजबाह हा ओलाह कहा जाता था।
पीतल का सीधा सा मतलब है कि यह उस समय काम करने के लिए सबसे कठोर धातु से बना था, कांस्य, लोहे और तांबे का मिश्रण। इसलिए वेदी बलिदान की वेदी, होम बलि की वेदी, पीतल की वेदी, ये सभी एक ही चीज को संदर्भित करते हैं। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए वेदी एक विशेष अग्निकुंड थी, एक बक्सा जिसे बबूल की लकड़ी से फ्रेम के रूप में बनाया गया था और फिर कांस्य से ढका गया था ताकि यह आग न पकड़ ले। यह प्रत्येक तरफ लगभग 7% लंबा और 5 से थोड़ा कम ऊंचा था। इसमें 4 होम्स ढाले गए थे, प्रत्येक कोने पर एक। इन होम्स का उपयोग बलि प्रक्रिया के दौरान बलि के जानवरों को बांधने के लिए किया जाता था। होम्स का कोई वास्तविक महत्व था या वे केवल व्यावहारिक कारणों से थे, ये एक खुला प्रश्न है। कनानियों की वेदियां मिली हैं और इनमें से कई में होम्स भी थे। वेदी के साथ प्रयोग के लिए कई औजारों और उपकरणों की आवश्यकता थी और उन्हें उपयोग में लाया जाना था। राख से निपटने के लिए कांस्य फावधे, राख को इकट्ठा करने के लिए बाल्टी और बाल्टी से बने पशु रक्त, गर्म कोयले ले जाने के लिए सेंसर, कभी कभी अग्निपैन कहा जाता है, और विशेष फावरा, आरपैन, राख को शिविर के बाहर ले जाकर उसका निपटान करना, ठीक वैसे ही जैसे वाचा के संदूक के साथ किया गया था। वेदी के किनारों पर छल्ले लगाए गए थे ताकि लकड़ी के खंभे डाले जा सके। जब तंबू को स्थानांतरित करने का समय आया तो छल्ले को वेदी को ले जाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया, यहोवा के निर्देश के अनुसार। वेदी को गाड़ी पर रखकर नहीं हिलाया गया, इसे हाथ से हिलाया गया था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, इसलिए डंडों का उपयोग किया जाता है। वेदी को बाहरी प्रांगण के द्वार के ठीक अंदर रखा गया था। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह बताया था, जब मूसा को एक वेदी बनाने के लिए कहा गया था जिस पर जानवरों की बलि दी जाए ताकि वेदी को सील किया जा सके। इसराइल और यहोवा के बीच वाचा, मूसा की वाचा, परमेश्वर ने उसे पवित्र क्षेत्र माउंट सिनाई के बाहर रखने को कहा। इसके बजाय इसे एक क्षेत्र घाटी तल पत्थर की बार से परे जाना था जो बार के रूप में कार्य करती थी, एक ऐसा क्षेत्र जहां लोग रात और दिन पहुंच सकते थे। इसलिए अपने स्वरूप के अनुसार पीतल की वेदी को तंबू के पवित्र क्षेत्र, अभयारण्य के बाहर और बाहरी प्रांगण में रखा गया था जहां लोगों की लगातार पहुंच थी। वैसे इसका लगभग निश्चित रूप से मतलब है कि पत्थर की वेदी जहां वाचा की मुहर लगाने वाला बलिदान हुआ था, पीतल की वेदी के बनने और चालू होने के बाद उसे बंद कर दिया गया होगा। वेदी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। यह बाहरी प्रांगण द्वार और पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के बीच था। पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए वेदी के पास से गुजरना पड़ता था। वास्तव में हर बार पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले उसे बलिदान देना पड़ता था। यह यीशु के उद्देश्य की भविष्यवाणी और प्रतीकात्मक शिक्षा है। हमें परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए छंस्ट के बलिदान से गुजरना होगा। संभवतः सबसे अच्छा प्रतीक जिसका उपयोग हम पीतल की वेदी और यीशु के बीच के संबंध को समझने में कर सकते हैं वह है क्रॉस। अर्थात क्रॉस चंस्ट के लिए वैसा ही था जैसा पीतल की वेदी उन बलि के जानवरों के लिए थी, जानवरों को वेदी के सींगों से बांधकर वेदी तक उठाया जाना था और वहां उनका खून इज़राइल के पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया गया था। चंस्ट को उस क्रूस पर उठाया जाना था जिससे वह बंधा हुआ था और वहां उसका खून इज़राइल के पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया गया था। निश्चित रूप से इस योजना में गैर इज़राइलियों के लिए भी प्रावधान किया गया था कि वे रहस्यमय तरीके से इज़राइल से जुड़े ताकि हम परमेश्वर के साथ उनकी वाचाओं में भागी हो सकें। लेकिन ऐसा होने का यही एकमात्र तरीका था। किसी को इज़राइल और यहोवा के साथ उनकी वाचाओं में शामिल होना था ताकि मसीह ने जो किया उससे लाभ उठा सके। मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी को आस्तिक बनने के लिए शारीरिक यहूदी बनना पड़ता है और न ही किसी को धर्म परिवर्तन करके यहूदी धर्म का पालन करना पड़ता है। ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टेड इनटू शब्द एक रूपक है और इसका उपयोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया जाता है, न कि शारीरिक रूप से। और यह तब होता है जब विश्वास के द्वारा आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में भरोसा करते हैं। सुनिए रोमियो 2:3 में पौलुस क्या कहता है।
रोमियो 2:17 से रोमियो 3:14 तक पढ़ें। कभी कभी हम ईसाई लोग बाइबल के बारे में सामान्यीकरण और वैज्ञानिक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर प्रवृत्त होते हैं, जिसके अनुसार सभी चीजें या तो यह होनी चाहिए। खैर, यह वह तरीका नहीं है जिससे परमेश्वर कार्य करता है। यहां रोमियो में यह समझाया गया है कि सिर्फ इसलिए कि कई यहूदियों ने उनके लिए परमेश्वर की उद्धार योजना का तार्किक निष्कर्ष तक पालन नहीं किया, परमेश्वर की योजना या उनके प्रति उनकी वफादारी को रद्द नहीं करता है। इसके अलावा हमें यह समझना शुरू करना होगा कि पृथ्वी पर इज़राइल के निर्माण से बहुत पहले इज़राइल का स्वर्गीय आदर्श, जो मनुष्यों के बीच परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करना था, अस्तित्व में था। इज़राइल को पृथ्वी पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए बनाया गया था, इन नियमों और सिद्धांतों को रिकॉर्ड करके और उनका प्रदर्शन करके, ताकि सभी मानव जाति देख सके और कुछ निश्चित शर्तों के तहत स्वर्गीय आदर्श से लाभ उठा सके। इज़राइल कुछ हद तक सफल रहा और कुछ हद तक असफल रहा। पौलुस के अनुसार जो यहूदी इस स्वर्गीय आदर्श पर कायम रहे, वे वही हैं जिन्होंने यहोवा द्वारा भेजे गए मसीहा यीशुआ को स्वीकार किया। पौलुस आगे बताते हैं कि जो यहूदी उस स्वर्गीय आदर्श पर कायम रहे, उन्हें वह स्वर्गीय परिप्रेक्ष्य से सच्चा यहूदी कहते हैं। इसके विपरीत जो यहूदी केवल अनुष्ठान और अनुष्ठान करते हैं, वे परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और विश्वास से अलग होते हैं और परमेश्वर के मसीहा को स्वीकार करते हैं। शारीरिक रूप से यहूदी तो है, लेकिन अपने उद्देश्य में असफल हो गया है।
लेकिन यहां एक और अवधारणा भी पेश की गई है, जो एक गैर यहूदी की है, जो इज़राइल के मसीहा यीशुआ पर भरोसा करता है और इस प्रकार स्वर्गीय आदर्श के लिए प्रयास करता है। इस गैर यहूदी, जिसे आज हम एक बचा हुआ व्यक्ति या आस्तिक कहेंगे, को उस श्रेणी में रखा गया है जिसे संत पौलुस ने सच्चा यहूदी कहा है। फिर से, ऐसा नहीं है कि एक गैर यहूदी में अचानक इब्रानी जीन प्रत्यारोपित हो जाते हैं, बल्कि यह कि इस गैर यहूदी को परमेश्वर उन लोगों के सदस्य के रूप में देखता है जो इज़राइल के स्वर्गीय आदर्श को दर्शाते हैं। इस धारणा को समझना हमारे लिए उस अच्छी तरह से स्थापित और सही ईसाई सिद्धांत से अधिक कठिन नहीं होना चाहिए कि जब हम यीशुआ के बलिदान के खून से बचाए जाते हैं, तो परमेश्वर हमें पापी पुरुष और महिला के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध और स्वच्छ के रूप में देखते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे अंदर अभी भी बुराई है। हम न चाहते हुए भी पाप करना जारी रखेंगे और हम परमेश्वर के खिलाफ गलत करने की इच्छा से मरते दम तक लड़ेंगे। हमारा DNA नहीं बदला है। हम अभी भी पूरी तरह से इंसान हैं। परमेश्वर के ज्ञान के साथ साथ सोचने के पुराने तरीके अभी भी वहां हैं। फिर भी पिता हमें पाप से मुक्त देखना चुनते हैं। वह हमें भौतिक वास्तविकता की परवाह किए बिना न्याय संगत मानते हैं। एक और तरीका जिससे परमेश्वर गैर यहूदी विश्वासियों को देखना चुनते हैं, वह उन लोगों के रूप में है जिनके पास उन लोगों के गुण हैं जो स्वर्गीय आदर्श इज़राइल को मूर्त रूप देने के लिए अभिप्रेत थे। हम यहूदी नहीं हैं। बाइबल में हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि हम गैर यहूदी विश्वासियों का इज़राइल के प्रति कितना आभार है। यह न केवल आभार की भावना है, बल्कि मूर्त तरीकों से उस आभार को व्यक्त करने का कार्य भी है। आज रात आधे घंटे का समय लें और रोमियो 9:10-11 को पढ़ें। इन अध्यायों को एक के बाद एक पढ़ें। अध्याय चिन्हों को पूरी तरह से अनदेखा करें, क्योंकि रोमियो का पत्र केवल एक लंबा पत्र है। इन अध्यायों के बारे में आपको जो भी रूपक शिक्षाएं मिली हैं, उन्हें एक तरफ रख दें। इसके बजाय इसे उसी तरह लें जैसा कि इसे लिया जाना चाहिए। यह आपके लिए इज़राइल में गैर यहूदियों की इस सहज प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट और सुस्पष्ट बना देगा। मुझे कुछ और बताने दें। यहां पीतल की वेदी के माध्यम से सभी के लिए एक शाश्वत परमेश्वरीय सिद्धांत को स्पष्ट और दृश्यमान किया जा रहा है, और यह है कि रक्त बलिदान के बिना पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। वेदी पर लगातार दिन प्रतिदिन बलिदान इस सिद्धांत के बारे में इज़राइल के लोगों के लिए एक स्पष्ट और भयानक अनुस्मारक था। मुझे संदेह है हालांकि जैसे हम में से कुछ लोग यीशु के खुद के बलिदान के बारे में एक तरह से अलग तथ्यात्मक तरीके से बात कर सकते हैं, शायद उनमें से कुछ इजरायली उन असंख्य हानि रहित निर्दोष मवेशियों, भैरों और बकरियों की दयनीय मिमियाहट के कारण आंसू नहीं रोक रहे थे जो उनके लिए मारे गए थे, या उन लाखों पक्षियों की गर्दन मरोड़ दी गई और उन विशाल बैलों को कुश्ती करनी पड़ी और उन्हें बांधना पड़ा क्योंकि वे अपने गले काटे जाने और अपने जीवन को समाप्त करने का विरोध कर रहे थे। लेकिन औसत इजरायली जो नियमित रूप से बलिदान प्रक्रिया को देखता था, उसके लिए यह इस सच्चाई की सबसे कड़वी मीठी समझ का परिणाम रहा होगा कि रक्त बलिदान के बिना पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। जानने में थी कि यह सब एक अत्यंत दयालु परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित किया गया था ताकि उनका अपना जीवन बच सके और ताकि वे एक सतत जीवन जी सके। ब्रह्मांड के पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध, लेकिन क्या बड़ी कीमत।
शायद मेल गिब्सन की फिल्म दी पैशन वह आधुनिक दृश्य तत्व था जिसकी हमें जरूरत थी। यीशु के जीवन के अंतिम घंटों की भयावहता को समझने में हमारी मदद करें। मुझे पता है कि मैं अक्सर सिहर उठता था, अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया ताकि उसका खून, उसका बलिदान का खून छींटे और लिप्त न देख सके, फुटपाथ पर हर जगह। लेकिन दोस्तों, बलिदान के बारे में यही एक सच्चाई है, बलिदान प्यारा नहीं है। वेदी पर उन जानवरों की मृत्यु शांतिपूर्ण और आसान और नीरस नहीं थी, नहीं निजी तौर पर की गई थी। वे शोरगुल वाले, गंदे और बदबूदार और अक्सर दिल दहलाने वाले थे। जो लोग अपने जानवरों को बलि के लिए लाते थे, उन्हें या तो खुद ही यह काम करना, मुझे कुछ और बताने दें, यहां पीतल की वेदी के माध्यम से सभी के लिए एक शाश्वत परमेश्वरीय सिद्धांत को स्पष्ट और दृश्यमान किया जा रहा है, और यह है कि रक्त बलिदान के बिना पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। वेदी पर लगातार दिन प्रतिदिन बलिदान इस सिद्धांत के बारे में इसराइल के लोगों के लिए एक स्पष्ट और भयानक अनुस्मारक था। मुझे संदेह है, हालांकि जैसे हम में से कुछ लोग यीशु के खुद के बलिदान के बारे में एक तरह से अलग तथ्यात्मक तरीके से बात कर सकते हैं, शायद उनमें से कुछ इसराइली उन असंख्य हानि रहित निर्दोष मवेशियों, भैरों और बकरियों की दयनीय मिमियाहट के कारण आंसू नहीं रोक रहे थे जो उनके लिए मारे गए थे, या उन लाखों पक्षियों की गर्दन मरोड़ दी गई और उन विशाल बैलों को कुश्ती करनी पड़ी और उन्हें बांधना पड़ा क्योंकि वे अपने गले काटे जाने और अपने जीवन को समाप्त करने का विरोध कर रहे थे। लेकिन औसत इसराइली जो नियमित रूप से बलिदान प्रक्रिया को देखता था, उसके लिए यह इस सच्चाई की सबसे कड़वी मीठी समझ का परिणाम रहा होगा कि रक्त बलिदान के बिना पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये जानने में थी कि यह सब एक अत्यंत दयालु परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित किया गया था ताकि उनका अपना जीवन बच सके और ताकि वे एक सतत जीवन जी सकें। ब्रह्मांड के पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध, लेकिन क्या बड़ी कीमतता था, या पुजारी के साथ मिलकर। इससे पीछे हटने की कोई बात नहीं थी, खुद को अलग नहीं करना था, अपने कर्तव्य से छिपना नहीं था। उनका पाप, हमारा पाप अपने साथ एक भयानक कीमत लाता है। परमेश्वर का शुक्र है कि अब पीतल की वेदी की कोई जरूरत नहीं है।
20वें पद से शुरू करते हुए तंबू के मेनोराह के लिए ईंधन पर चर्चा की गई है। इसे शुद्ध जैतून के तेल से बनाया जाना चाहिए, जिसे इस तरह से परिष्कृत किया जाना चाहिए कि यह सबसे अच्छा हो। यहां निर्देश दिया गया है कि उस मेनोराह की रोशनी दिन रात जलती रहनी चाहिए, और यह दोहराया गया है कि मेनोराह को पर्दे, घूंघट, परोखेत के बाहर रखा जाना चाहिए, जो पवित्रतम स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है। दूसरे शब्दों में, इसे पवित्र स्थान में रखा जाना चाहिए और हारून और उसके बेटों को इसकी देखभाल करनी चाहिए। मैं बस इतना ही उल्लेख करना चाहता हूं कि हारून पूरे लेवी जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह लेवी जनजाति के भीतर कई कुलों में से एक है। अन्य लेवी कुलों को तंबू के लिए कुछ प्रकार की सेवा कर्तव्यों के लिए चुना जाएगा। उदाहरण के लिए, केवल हारून के प्रत्यक्ष वंशज ही उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह जो लोग मेनोराह की देखभाल करते हैं, उन्हें भी हारून की वंशावली से आना चाहिए। लेवियों के अन्य कुलों को
अन्य विशिष्ट कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार के रूप में पहचाना जाएगा।
अध्याय 27 की अंतिम पद में ध्यान दें कि मेनोराह का उपयोग और लेवियों का वह विशिष्ट वंश जिसे इसकी देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया है एक स्थायी नियम होना है। हालांकि स्पष्ट रूप से इज़राइल के इतिहास में कम से कम दो बार ऐसा हुआ जब यह नियम आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता था। पहला उनके बेबीलोन निर्वासन के दौरान था और दूसरा 70 ईस्वी में मंदिर के विनाश के साथ शुरू हुआ और आज तक जारी है। वह समय निकट है जब मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा यरूशलेम में, मंदिर पर्वत पर जो आज एक मुस्लिम मस्जिद द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और मेनोराह एक बार फिर से जल जाएगा। लेकिन विश्वासियों के लिए इस अविश्वसनीय घटना के होने की उम्मीद करने का एकमात्र कारण यह है कि इसका मतलब है कि मसीह की वापसी सचमुच कुछ हफ्तों और महीनों की दूरी पर होगी, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का अंत होगा। यहूदी लोगों के अविश्वास के कारण वह मंदिर बनने जा रहा है। अविश्वास कि मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है एक बार और हमेशा के लिए लगभग 2000 साल पहले। अविश्वास कि जीवित परमेश्वर की आत्मा हम में रहती है, किसी भव्य इमारत में नहीं। अविश्वास कि मंदिर और उससे पहले तंबू असली चीज की नकलें, छायाएं मात्र थे, और यीशु मसीह असली चीज है।
अध्याय 28:1-5 पढ़ें।
बहुत तैयारी के बाद यहोवा कुछ हद तक एक अप्रत्याशित घोषणा करता है कि हारून और उसके बेटों नादाव, अपदहू, एलियाजर और इतामार को याजक होने के लिए चुन लिया गया है और अलग कर दिया गया है। उसी समय परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि इन याजकों के लिए विशेष वस्त्र बनाए जाएं, जो उन्हें बाकी सभी से अलग करता है। हमें पद 2 में बताया गया है कि प्रथम महायाजक के रूप में हारून के ऊंचे पद के प्रकाश में उसके वस्त्र विशेष से भी अधिक होने चाहिए। उन्हें जहां तक संभव हो परमेश्वर की अपनी महिमा और गरिमा और वैभव को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
इस संप्रदाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष कपड़े विभिन्न मध्य पूर्वी संस्कृतियों के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यह इसराइल के लिए नया था, क्योंकि उनके इतिहास में अब तक की रेखा इज़राइल याकूब लगभग 6 शताब्दियां पुराना था। उनके पास कोई आधिकारिक प्रतिष्ठा नहीं थी। निर्गमन और माउंट सिनाई तक उनकी पूजा जो भी रही होगी वह बहुत सरल, व्यक्तिगत और स्पष्ट रूप से, बल्कि असंरचित रही होगी। इब्रानियों को अपने इतिहास के अधिकांश समय में मिस्र के देवताओं और धार्मिक व्यवस्था के अधीन रहना पड़ा, और इसलिए उन्होंने कुछ हद तक अवचेतन रूप से, मुझे लगता है कि देवताओं और धर्म के काम करने के तरीके की सामान्य समझ को अपनाया। अर्थात मिस्र की धार्मिक व्यवस्था वह लेंस बन गई जिसके माध्यम से इज़राइल ने आत्मिक दुनिया को देखा। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहोवा इज़राइल को अपने निर्देशों में इतना सटीक, निश्चित और समझौताहीन था कि सच्ची उपासना में क्या शामिल होना चाहिए और क्या शामिल नहीं होना चाहिए, सच्चा न्याय क्या है और क्या नहीं है, और परमेश्वर कौन है। वह एक है और प्रत्येक व्यक्ति या राष्ट्र का अपना कोई वास्तविक और वास्तविक परमेश्वर नहीं है जो केवल उनके लिए समर्पित हो। माउंट सिनाई के बाद इसराइल को यह सब उचित रूप से समझने में कई साल लग गए, और फिर भी मसीह तक के अपने पूरे इतिहास में वे मूर्ति पूजा में गंभीर चूक करते रहे। अब जबकि यहोवा ने इज़राइल के उस हिस्से लेवी के गोत्र को जो उसके लिए सेवा के लिए अलग रखा जाना था, उसके याजकों को नियुक्त किया है, उसने उपासना और सेवा के बारे में बहुत कम विवरण मनुष्यों द्वारा तय किए जाने के लिए छोड़ा है, यहां तक कि याजकों को क्या पहनना है यह भी। अब मैं स्पष्ट कर दूं कि ये वस्त्र केवल तंबू में सेवा के समय लेवियों को पहनने थे, जब वे ड्यूटी पर नहीं होते थे तो वे वही पहनते थे जो बाकी सभी लोग पहनते थे।
हम मुख्य रूप से ये देखने जा रहे हैं कि महायाजक क्या पहनते थे, क्योंकि उनके वस्त्र अविश्वसनीय रूप से शिक्षा और प्रतीकवाद से भरे हुए थे, और क्योंकि पूरे पुराने और नए नियम में हम उनकी वर्दी के कुछ हिस्सों के बारे में सुनेंगे जिनमें से प्रत्येक का बहुत ही निश्चित अर्थ निहित था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि महायाजक के वस्त्र भी बहुत भविष्य सूचक थे।
हालांकि ऐसा करने से पहले आइए सामान्य तौर पर यह समझ लें कि नियमित लेवी पुजारी क्या पहनते थे। ये एक बहुत ही साधारण सफेद लिनन का पहनावा था। इसमें एक अंगरखा, एक पगड़ी वाली टोपी जिसे मित्र कहा जाता है, एक बेल्ट जैसी सहायक वस्तु जिसे कमरबंद कहा जाता है, और ब्रीच, पैंट जो अक्सर अंडरवियर की तरह काम आते हैं, शामिल थे। सफेद रंग का मतलब है पवित्रता और पवित्रता। अगले सप्ताह हम देखेंगे कि महायाजक को क्या पहनने के लिए नियुक्त किया गया था